بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں پیش خدمت ہے اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غزہ پر صہیونی حکومت کے تازہ ہوائی حملے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، صہیونی حکومت نے غزہ پر جمعے کی شام سے ہوائی حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا جس میں اب تک درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ پر ہوائی حملے جاری رہیں گے. غزہ پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملوں کا نیا سلسلہ صہیونی وزیر اعظم کی امریکہ سے واپسی کے بعد ہی شروع ہوا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حملے امریکہ کی اجازت اور اس کی آشیرواد کے ساتھ شروع کیے گئے ہیں. صہیونی حکومت نے غزہ کو اپنے وحشیانہ حملوں کی آمادگاہ ایسے وقت بنایا ہے کہ جب گزشتہ دنوں ایک بین الاقوامی کارواں کے ارکان غزہ پہنچے ہیں، جبکہ الہ بیت المقدس کے نام سے ایک بڑا بین الاقوامی کارواں ہندوستان سے روانہ ہو کے سنیچر کو پاکستان پہنچا ہے اور وہاں مختلف شہروں سے ہوتا ہوا 14 مارچ کو ایران پہنچے گا. یہ کارواں 30 مارچ کو لبنان سے مقبوضہ فلسطین میں داخل ہونا چاہتا ہے. اس کارواں میں ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا اور ایران سمیت مختلف ایشیائی ملکوں کے امن کارکن شامل ہیں. تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار طاہر واسطی صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. واسطی صاحب، السلام علیکم.
علیکم السلام مہدی شرافت.
واسطی صاحب، صہیونی حکومت نے جمعے سے ایک بار پھر غزہ پر انتہائی وحشیانہ انداز میں ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. ان حملوں کا محرک کیا ہے؟
مہدی شرافت، ان حملوں کا جو محرک ہے وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے. میرا خیال ہے جو مسلمان بیدار نہیں ہو رہے ہیں. یہ حملے 2007 کے بعد اور مستقل وہ کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے غزہ کی عوام شدید پریشر میں ہے. اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ بجلی گھر بند ہو چکے ہیں، 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے صرف بجلی رہتی ہے. ان کا محرک میرا خیال ہے اس جنگ کو طول دینا ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایران اور دوسرے اسلامی ممالک ان حملوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور ایران اس پر ضرور جو ہے کاروائی کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ لبنان اس کے اندر انوالو ہو. وہ ایک اس جنگ کو وسیع کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی اکوپیشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان حملوں کا محرک پانی کو ٹیسٹ کرنا ہے، جسے کہتے ہیں ایک ٹیسٹ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں ریسنٹلی فلسطین کے کلیشز میں کتنے ہی فلسطینی مارے گئے، کتنے ہی لوگ مارے گئے. چھوٹے چھوٹے کلیشز میں وہاں پہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور وہ مستقل مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور وہ تنگ کر رہے ہیں ایران کو، اور وہ تنگ کر رہے ہیں ان حکومتوں کو جو صہیونی حکومت کے خلاف ہیں، جو جوڈائز کرنے کے چکر میں ہیں جیروسلم کو اور اسرائیل کو. اور ان کو تنگ کرنے کا مقصد اس جنگ کو پھیلانا ہے، ایران کو انسائٹ کرنا ہے. چونکہ بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ اس جنگ میں لبنان کے ذریعے ایران کو انوالو کر کے ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ کو اس کی آشیرواد حاصل ہے. اور بدقسمتی یہ ہے مہدی شرافت کہ تمام مسلمان ملک اس وقت خواب خرگوش میں ہیں. یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ چلو پاکستان اور ایران سے ایک ایسا وفد وہاں پر مارچ کر رہا ہے جس جو شاید اخباروں اور میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں ایک تحریک کا باعث بنے اور محرک ہو اس بات کا کہ مسلمانوں میں اس بارے میں بیداری پیدا ہو، اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ کا سلسلہ اسرائیل نے شروع کر رکھا ہے یہ ختم ہو اور لوگ اس کی طرف جاگیں. چونکہ اگر آپ دیکھیے پاکستان کے اخبارات اور دوسرے ممالک کے اخبارات یہاں پہ گارڈین دیکھ لیجئے، امریکہ کا نیو یارک ٹائم دیکھ لیجئے، مین اخبارات میں کہیں پہ بھی یہ ٹاپک جو ہے یہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں کامنٹس پڑھوں، مختلف لوگوں کے تاثرات پڑھوں اس بارے میں، میں حیران ہوا کہ کسی انٹرنیشنل نیوز پیپر میں کسی کالم نگار نے اس پر کوئی وسیع و عریض کالم نہیں لکھے، اس کے متعلق بات نہیں کی۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اس وقت خواب خرگوش میں ہیں، انہیں علم نہیں ہے کہ ان کے بھائی مسلمانوں پر فلسطین میں کیا گزر رہی ہے، غزہ میں کیا گزر رہی ہے، کس طرح وہ گزارا کر رہے ہیں، کس طرح وہاں پہ فوڈ کی کمی ہے، کس طرح سے وہاں بجلی کی کمی اور بنیادی ضروریات کی کمی ہے۔ اور یہ جو وفد وہاں جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے شاید کوئی آگاہی پیدا ہو اور مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو۔ لیکن آپ کا جواب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بے بنیادی طور پر یہ ایتھنک کلینزنگ کا عمل ہے جو اسرائیل نے اپنے ناپاک وجود سے 1948 سے شروع کر رکھا ہے اور آج تک کر رہا ہے، اور یہ ایک تھپڑ ہے ان تمام عرب ممالک پر جو فلسطین کے ہمسائے میں رہتے ہیں بالعموم، اور جنرلی ان مسلمانوں کے اوپر جو فلسطین کے میں فلسطینی کے حقوق سے بے بہرا ہو چکے ہیں اور اس کے متعلق مستقل آواز نہیں اٹھا رہے۔
بہت
بنیادی طور پر یہ ایتھنک کلینزنگ کا عمل ہے، اور اس میں وہ انوالو کرنا چاہتا ہے لبنان کو اور اس کے ذریعے ایران کو۔
بہت بہت شکریہ واسطے صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار ظفر آغا صاحب موجود ہیں۔ ظفر آغا صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم جناب۔
ظفر آغا صاحب، غزہ پر صہیونی حکومت کے جو ہوائی حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ کے خیال میں اس کا مقصد کیا ہے؟
دیکھیے، معاملہ محض فلسطین کا نہیں،
جی
معاملہ اسرائیل کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اس پورے خطے میں اپنا ڈومیننس برقرار کرنا چاہتا ہے، اور اس کو پریشانی اگر کہیں سے پورے عالم اسلام میں اور عالم عرب سے آ رہی ہے تو وہ آ رہی ہے ایران سے۔ چنانچہ وہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ایک ایسا بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ جس سے ایران کو پرووک کیا جا سکے۔ آپ یہ بھی واقف ہیں اور اس پروگرام کے تمام ناظرین بھی اس بات سے واقف ہیں کہ اس پورے خطے میں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک آواز ہے جو فلسطین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فلسطین کی، فلسطینیوں کی آواز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ آواز ہے ایران کی، حکومت ایران کی۔ چنانچہ وہ، ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایران کے فلسطین کے اوپر ظلم بڑھتا ہے تو ایران ضرور کچھ بولے گا، اور اس اگر ایران کچھ بولتا ہے تو پھر وہ کسی طرح سے ایران کو اس فلسطین کے معاملے میں ڈریگ کریں۔ بنیادی مقصد یہ ہے۔ جہاں تک عراق فلسطینیوں کے اوپر ظلم کا سوال ہے، ابھی لندن اسٹوڈیو سے میں سن رہا تھا جو اس پروگرام میں شریک ہیں، انہوں نے جیسا کہا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ تو اتنی بالکل بجا فرمایا کہ اتنی کلنزنگ کا مسئلہ ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت سے یہ تمام جو سازشیں ہوئیں اس دنیا واقف ہے، اور اس میں کسی طرح سے فلسطین کی آواز کو کچل دینا ہے، وہاں کے عوام کو، وہ جو بچے ہیں اب بیچارے، جو ایک مٹھی پر فلسطینی جو فلسطین میں رہ گئے ہیں، ان کو اس قدر دبا اور کچل دیا جائے کہ وہ آواز بھی اپنی اٹھانا بند کر دیں۔ یہ تمام کوششیں ہیں، اور سن 48 سے اب تک، سن 49 سے 19 جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے تب سے اب تک یہ کوششیں جاری ہیں۔ لیکن مسئلہ اسرائیل کے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خطے میں اور عالمی سیاست میں اسرائیل اب کسی حد تک تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ قوت جو اسرائیل کی خود اسرائیلی قوت کا سرچشمہ ہے، یعنی امریکہ اور امریکن امپیریلزم، اس قوت کے دانت عراق اور افغانستان کی جنگ کے دوران ٹوٹ چکے ہیں۔ ان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ امریکہ کی، آپ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت کس قدر خراب ہے۔ یعنی براک اوباما نے ابھی میرے خیال سے 24 گھنٹے پہلے یا کچھ ایک دن پہلے ये बात कही है कि वो अब ईरान पे हमला करने की पोजीशन में नहीं है। हालांकि हो सकता है कि ये बयान धोखे के लिए दिया गया हो, लेकिन जमीन की सूरत हाल ये है कि अमेरिका अब कहीं भी जंग करने की सूरत में बचा नहीं है। फिर ये सदी, जैसा कहा जाता है, दुनिया में कहा जा रहा है कि एशिया की सदी है। एशिया न सिर्फ जाग रहा है बल्कि एशिया इस सदी में माशी तरक्की की उन राहों पर आ चुका है कि जहां से वो उसने अमेरिका और यूरोप को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। माशी एतबार से चीन की तरक्की दुनिया वाकिफ है, हिंदुस्तान बेहद तेजी से तरक्की कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के ऊपर जब से इंकलाब आया है तब से अब तक तरह तरह की पाबंदियां, तरह तरह की सैंक्शन, हर किस्म की मुसीबतें खड़ी की गई, लेकिन इसके बरखिलाफ ईरान तरक्की भी कर रहा है और अपने खित्ते में वो एक छोटी सी पावर भी बनकर उभर रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिससे वो परेशान है। इसराइल परेशान है, अमेरिका परेशान है, और वो ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह से गाजा के ऊपर हमले करके ये चाहते हैं कि ईरान उनकी हिमायत में कुछ बोले तो फिर ईरान को बदनाम किया जाए। लेकिन अवामी बेदारी पैदा हो रही है। हमारे लंदन स्टूडियो में जैसे हमारे आपके मेहमान ये फरमा रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, दुनिया के बड़े अखबारों में, दुनिया के बड़े टेलीविजन चैनल्स पे फिलिस्तीन का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके ये माने नहीं, कतल नहीं कि मसले फिलिस्तीन इन दुनिया के कॉन्शंस से खत्म हो गया, उसको मिटा दिया गया। ये मुमकिन, ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल से सही नहीं। अब जो अल्टरनेटिव मीडिया बन के आ रहा है, आप वाकिफ होंगे कि मिलियन मार्च होने हो रही है जेरूसलम के लिए। ये कोई इस्लामी मुल्क के लोग इसमें खाली शामिल नहीं है, इसमें दुनिया भर के। अभी हिंदुस्तान में, दिल्ली में परसों इस मार्च में शिरकत करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी नमक के बराबर थी और उसमें सैकड़ों लोग शिरकत के लिए जाने को तैयार हैं उस मिलियन मार्च में। ये इस बात का सबूत है कि तमाम साजिशों के बावजूद फिलिस्तीन और मसले फिलिस्तीन जिंदा है और उसकी हिमायत करने वाले ईरान जैसे मुल्क उसकी पुष्पनाही के लिए खड़े हुए हैं और इसराइल अब आलमी सियासत में तन्हा होता जा रहा है। भले ही अमेरिका उसके पृष्ठ पर नजर आ रहा हो, लेकिन खुद अमेरिका की ताकत में सेंध लग चुकी है। चुनांचे वो जिस तरह से सन 60, सन 70 और सन 80 की दहाई में इसराइल कामयाब हुआ करता था, अब वो कामयाबी इसराइल के लिए मुमकिन नहीं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार और मुमताज सहाफी आगा मसूद हुसैन साहब से। आगा मसूद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
आगा मसूद हुसैन साहब, ये जुमे को जो हमले शुरू हुए हैं सहूनी हुकूमत के गजा पर और उनका सिलसिला जारी है, ये हमला ऐसी हालत में शुरू हुआ है कि सहूनी हुकूमत के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू अमरीका का दौरा करके वापस आए, तो इस हमले में और उनके अमरीकी दौरे में क्या रब्त है?
देखिए, बात दरअसल यह है कि ये अमरीका जो गए थे उनका बुनियादी मकसद यही था कि वो अमरीका से आशीर्वाद हासिल करें कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उस पर वो हमला कर दें, और इस सिलसिले में उनकी बड़ी बातें भी हुई। फिर उन्होंने बाकायदा वहां की जो इसराइल लॉबी है उससे भी उन्होंने खिताब किया जिसमें बहुत से अफराद ने शिरकत की, लेकिन यह है कि वहां पे जो अमेरिका का जो इस वक्त मूड है और खुद बराक ओबामा का जो मूड है वो इस वक्त ऐसा नहीं है कि वो बराक नेतन्याहू को इजाजत दे दें कि वो ईरान पर हमला करे, और उन्होंने इसकी सख्ती से बाकायदा कहा है। खुद बाद में जो बराक ओबामा के जो बयान आ रहे हैं, जो अमेरिका के थिंक टैंक के बयान आ रहे हैं, वो इस बात की माजी है कि वो इसराइल को इस बात की इजाजत नहीं देंगे। अब रहा यह कि गाजा स्ट्रिप पे वो जिस तरीके से वो हमले कर रहा है, आपको मालूम, वो दरअसल ये है कि वहां पे इस्लामी जहद एक तंजीम है जो कि बहुत ही फाल है, बहुत ही मुतर्रिक है, और वो इसराइल की जो ये सारी नाइंसाफियां हैं सऊनी रियासत की और खुद जो जेरूसलम के अंदर जो दोबारा तामीरात शुरू हो गई हैं इस सिलसिले में वो मुजाहरा करते रहते हैं। वो निहत्ते लोग हैं लेकिन ये है कि वो सऊदी रियासत जाहिर है कि इस बात को भी बात करने को तैयार नहीं है कि वहां पर इस किस्म के कोई मुजाहरे हों, और झूठ इल्जाम लगाया कि वहां से रॉकेट के हमले किए जाते हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। और अगर ये बात माफ कीजिए लेबनान की तरफ से, जुनूबी लेबनान की तरफ से बात हो तो कुछ समझ में आने वाली बात है, लेकिन वहां ऐसा कोई नहीं है। बात असल ये है कि हमास के और अल फतह के दरमियान जो मुफाहमत हुई थी गुज़श्ता साल, उसमें कोई गर्मजोशी नजर नहीं आ रही, कोई तेजी नजर नहीं आ रही। अगर ये मुफाहमत बड़ी तेज हो जाती और एक दूसरे से मिल जाते तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब सूरत हाल ये है कि फतेह जो है इसराइल की तरफ देखता है हर चीज के अंदर, यानी महमूद अब्बास साहब इसराइल से मतलब न क्यों लेते हैं, और हमास जो है वो अब उनकी जो सोच है वो ये है कि वो ब्रदरहुड की तरफ चली गई है, मिस्र के अफान मुस्लिमीन की तरफ। और खुद आप देखें कि हमास के जो लीडरशिप है खालिद मशल और इस्माइल हानिया, इनके माबेन भी जो है वो आप देख रहे हैं कि इख्तलाफात हो गए हैं। जब इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो खालिद मशल जो है वो जॉर्डन गए हुए हैं वो शाह उर्दन के शाह से मुलाकात करने, और इस्माइल हानिया अभी ईरान आने वाले हैं कुछ दिन के बाद, दो तीन दिन के बाद। तो ये चीजें जो है ये इसराइल को बड़ी तकलीफ पहुंचाती है कि इनके माबेन जो इत्तेहाद होने वाला था, और खुद जो हमास की जो बड़ी ताकतवर लीडरशिप है जिसको आवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है, 2007 के इंतखाबात में उनको भरपूर हिमायत मिली थी आवाम की तरफ से, तो ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ये इसराइल के हक में जा रही है, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में मैं माफी चाहता हूँ, इस सिलसिले में हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनका भी कोई रवैया ज्यादा बेहतर नहीं है, और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि इसराइल जो है वो तना है, बल्कि मुसलमान ममालिक जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बाकायदा इसराइल को शह देते हैं और इसराइल को कहते हैं कि ठीक है ईरान के खिलाफ अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपकी हिमायत करेंगे। ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए गए हैं कि सांप के सर को कुचल देना चाहिए, ये इशारे हैं इस किस्म के जो सऊदी रियासत को मुसलमान ममालिक की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अमरीका जो है वो अब उसका रवैया ईरान की तरफ जरा सा माकूल हुआ है, और छह बड़े ममालिक यूरोप के अब ईरान से जो है वो बात करेंगे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में। ईरान ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि आप वो सारे साइट्स जो जिन पर आपको शुबा है कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं उनको भी आप दे सकते हैं। फिर अली खमानाई जो रूहानी रहबर और रहनुमा है ईरान के और मुसलमानों के, उनके बयान को बड़ी बड़ी पब्लिसिटी मिली अमेरिका में और यूरोप में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, और विलायत सखी की सूरत में हम जो है ना कभी भी नहीं सोच सकते कि एक ऐसे मौलिक हथियार बनाए जाए जो इनसे इंसानियत खुश हो। तो उनके बयान से भी मतलब ये कि बड़ा फर्क पड़ा है, और ईरान की जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत मतलब ये कि सराहाया जा रहा है सारी दुनिया में। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें इसराइल की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो ईरान पे हमला करे, लेकिन यकीनी तौर पर यह है कि वो मुसलमानों के अदम इत्तेहाद की वजह से, निफाक की वजह से, इनके दरमियान जो दूरी है और जो इनके सियासत के अंदर जो पेचोखम है और जिसमें इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा, वो यकीनी तौर पर वेस्ट बैंक पे भी कभी कभी और गाजा स्ट्रिप पे भी हमला करता रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब, लाइन पर रहिएगा। वास्ती साहब, जनाब ये सहूनी वजीर आजम के दौरे अमरीका में सदर बाराक ओबामा ने ईरान पर हमले की मुखालफत तो की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसराइल के लिए अपनी खिदमात गिनवाई और इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह से उनकी हुकूमत ने इसराइल की हिमायत की है उस तरह अब तक की किसी भी अमरीकी हुकूमत ने इसराइल की हिमायत नहीं की है, और इसराइल की हर हाल में भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। गजा वहां अमरीकी दौरे से नेतन्याहू के वापस आते ही गजा पर हवाई हमले शुरू हो गए हैं, तो इससे क्या नतीजा निकाला जाए कि क्या अमरीका का गुस्सा गजा पर उतारा जा रहा, ईरान का गुस्सा गजा पर उतारा जा रहा है?
जी हाँ, मेरी शराफत आपका कहना बजा है, मैं आपके कंक्लूजन से इत्तफाक करता हूँ कि यकीनन ईरान का गुस्सा तो गजा पर उतारा जा रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मेहदी, बराक ओबामा मेरे ख्याल में, मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, पेश इन गोई नहीं कर सकता कोई नजूमी वाली, लेकिन मैं आपके तवज्जो से अपने ईरानी भाइयों को ये बात बता दूं कि अगर बराक ओबामा की हुकूमत रही और बराक ओबामा हुकूमत में रहे तो ईरान पर इसराइल का हमला नामुमकिन है, और अमेरिका कभी भी इसराइल को बराक ओबामा की सरबराही में ईरान पर हमला नहीं करने देगा। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है एक पॉलिटिकल रीडर राइटर होने की हैसियत से। दूसरी बात यह है कि सदर बराक ओबामा की जहानत यह है कि वो इसराइल से और इसराइल की लॉबी से अपने पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस में वोट तो चाहते हैं, वो सहयोनी लॉबी को अपने मुल्क में नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन वो किसी सूरत भी इसराइल को इस हद तक भी ओपन हैंड नहीं दे सकते कि वो जाकर ईरान पर हमला कर दे। कोई भी सदर हो बदकिस्मती से अमेरिका का और मुसलमानों की शरीफ बदकिस्मती से कि जिनके 56 ममालिक हैं दुनिया में, वो 56 ममालिक अमेरिका पर उस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकते जिस तरह से ये इसराइल, जिसका कोई इखलाकी जवाज नहीं है मिडल ईस्ट में होने का, ऐसा मुल्क इसराइल अमेरिका की लॉबी पर असरअंदाज होता है। उस लॉबी के बेशुमार वोट्स हैं, कांग्रेस में बहुत वोट्स हैं, और मैं और आप ये बात समझते हैं मेहदी कि मीडिया के हवाले से इसराइल ने अपनी एक इस किस्म की लॉबी बना दी है कि अगर मैं और आप इसराइल की खिलाफ बात करें एक वेस्टर्न सर्कल में तो समझा यह जाएगा कि हम यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान यहूदियों के खिलाफ बात नहीं करते। हम इसराइल के मिडल ईस्ट में होने के गैर इखलाकी जवाज की बात करते हैं। अभी मैं कानूनी बात नहीं कर रहा, चूंकि 1948 का जो एक मुसवदा है और जो एक रेजोल्यूशन है जिसके तहत ये इसराइल वजूद में आया, उस पर कभी फिर बात करेंगे, वो भी एक लिहाज से गैर कानूनी है और इंसानी हकूक के खिलाफ है वो रेजोल्यूशन और बेलफोर जो है स्टेटमेंट डिक्लेरेशन, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता। मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से देता हूं कि चूंकि सदर बराक ओबामा ने ये खुले लफ्जों में कह दिया है कि हमने आपके साथ बहुत ताबुन किया और ताबुन करते रहेंगे, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप जाकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करें और कोई एडवेंचर करें ईरान के साथ, चूंकि ईरान जब उसका वापस जवाब देगा वो शायद आपके लिए और अमेरिका के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये एक बहुत क्लियर मैसेज सरदार बराक ओबामा ने नेतन्याहू को दिया। देखिए बेहदी शराफत, इसराइल का जो वजूद है वो खौफ पर मबनी है। उसका वो दो तरह के खौफ से हुकूमत चला रहे हैं अपनी। एक खौफ वो इसराइल की आवाम में खुद पैदा करते हैं, और वो खौफ ये है कि हम इनसिक्योर हैं अपने हमसायों की वजह से, हमारे हमसाए हम पर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं और उनकी मजबूती हमारी इनसिक्योरिटी की वजह है। इस तरह से वो अपनी आवाम को डराते हैं, और दूसरी तरफ वो अपने हमसायों को ये डराते हैं कि इसराइल मिलिट्री पावर में तुमसे बहुत ज्यादा है और तुम्हें हर जंग में मात देगा। इस खौफ की सियासत को जो इस दो तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं उसका वो एक्सरसाइज करते रहते हैं मुख्तलिफ हवाले से। गजा में जो ये उन्होंने रीसेंट अटैक किए हैं अमेरिका से आने के बाद, यकीनन ये इस बात का गुस्सा तो है उन्हें, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि एक छोटा मोटा मफाहमती अमल चल रहा है फलस्तीन के अपने इस्माइल हनिया और इस्माइल रिजवान के दरमियान, और ये जो एक बातचीत चल रही है ये उसको भी सैपोताश करने का एक एक जरिया बना रहे हैं, ये उस खौफ को और उस मफाहमत को कभी नहीं देख सकते। मैं आगा मसूद हुसैन साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं जो उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती से, मैं नाम ले सकता हूं कि सऊदी अरब ने और उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला करेंगे तो हम आपको पेट्रोल मुहैया करेंगे, हम आपको अपने एयर स्पेस मुहैया करेंगे। ये हुआ है, ये कहा है कुछ ममालिक ने, जिससे साबित होता है कि हमारे यहां इत्तेहाद की कितनी कमी है, और हम अपनी मुखालफत की राय रखने वाले मुल्क पर हमला करने के लिए, जगह देने के लिए तैयार हैं उस मुल्क को जो मुसलमानों का मिन है, सो कौम दुश्मन है। फलस्तीन में जब गजा पर हमला किया जाता है तो ये नहीं सोचा जाता कि ये वहाबी पर हमला किया जा रहा है या शिया असना अशरी पर हमला किया जा रहा है या ये किसी खास फिरके पर हमला किया जा रहा है, चूंकि इसराइल तो मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए इसराइल का, मैं समझता हूं मुसलमानों के मसाइल इसराइल के खत्म होने से तो नहीं हल हो सकते, लेकिन मिडल ईस्ट के मसाइल और मुसलमानों के इंतशार के मसाइल जरूर इसराइल के पैदा करदा हैं, और वो इसराइल के गैर कानूनी और गैर इखलाकी जवाज जिसकी वजह से वहां मौजूद है, ये उसकी वजह से पैदा हुए हैं। ये जब फलस्तीनियों पर हमला करते हैं, ये जब गजा पर हमला करते हैं, ये जब वेस्ट बैंक पर हमला करते हैं, ये गैर इखलाकी भी है। और आप 1974 की 1972 के बेशुमार उस कानून के तहत, जिस कानून के तहत खुद इसराइल वजूद में आया मेहदी शराफत, ये उस कौमी असेंबली की बेशुमार करारदादों के भी खिलाफ है। कितनी ही करारदादें वहां पे पास की गई हैं मुतहिदा सलामती काउंसिल में, जिसकी वजह से इसराइल का वजूद में आया, ये उन करारदादों की खिलाफ वर्जी है, खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। बेसिक रेसोल्यूशन उन्होंने बनाया, उसके बाद 1974 में आई थिंक उसका नंबर है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 474 उस करारदाद का नंबर है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेसिक रेजोल्यूशन जो आपने जेरूसलम के लिए बनाया है ये गैर कानूनी है। सलामती काउंसिल ने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन कभी किसी इस पर अमल नहीं किया गया। मुसलमानों ने कभी नहीं कहा अमेरिका से मिलके कि जनाब हम 57 मुल्क आपका बायकॉट करते हैं अगर आप एक इसराइल के लिए हमारे करारदादों पर वीटो करते हैं। तो ये हमारे इंतशार से फायदा उठाया जा रहा है मेहदी शराफत बदकिस्मती से, और जब तक मुसलमान आपस में मिलकर अमेरिका पर दबाव नहीं डालेंगे, अमेरिका हमारे इंतशार से फायदा उठाता रहेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब। अमरीकी सदर ने बिन्यामिन नेतन्याहू के दौरे अमरीका के मौके पर इसराइल के लिए अपनी जो खिदमात गिनवाई हैं उनमें उन्होंने कहा है कि गजा पर 22 रोजा हमले के बारे में गोल्ड स्टोन रिपोर्ट को नाकाम बनाने में उनकी हुकूमत ने बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं और इसराइल की मजम्मत में कोई करारदाद पास नहीं होने दी। इस तरह के बयानात के असरात क्या हो सकते हैं?
देखिए अभी जैसा मुझसे कबल लंदन स्टूडियो से शरफ वो फरमाते
साहब,
बस मसला ये है कि बराक ओबामा हो या अमेरिका का कोई सदर, जी जी
जी
आपको मेरी आवाज आ रही
है? जी बिल्कुल आ रही है,
मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है जनाब।
हाँ मैं ये कह रहा था कि बराक ओबामा हो या अमेरिका का कोई दूसरा सदर,
जी
इसराइल हो, इसराइल का और अमेरिका का के जो रिश्ते हैं उसमें बराक ओबामा हो या कोई भी अमेरिकी सदर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी सदर ज्यूइश लॉबी के खिलाफ नहीं जा सकता। जो अमेरिकन सिस्टम के ऊपर, अमेरिकन माशियत के ऊपर, अमेरिकन पॉलिटिकल निजाम के ऊपर ज्यूइश लॉबी की जो गिरफ्त है वो एक अपनी जगह नुमाया बात है, लेकिन उससे इससे अहम बात यह है कि उन्होंने यानी अमेरिका ने और पूरे मगरबी दुनिया ने दो बड़े पिलर, दो बड़े सुतून अपने अपने मफाद के लिए के तहफ्फुज के लिए मिडल ईस्ट में बनाए हैं। उन दो सुतूनों का नाम है इसराइल और दूसरा सऊदी अरब। ये दोनों बिल्कुल, इन दोनों रियासतों की का मिजाज, इन दोनों रियासतों का मकसद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक है। वो इसराइल का काम टेररिज्म का काम है, उनके जिम्मे अमेरिका ने पूरे खत्ते में, पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, नेबर में खासतौर से इसराइल के नेबरहुड में उन्होंने ये जिम्मा सौंप रखा है कि अगर कहीं भी कोई ऐसा अमल होता है जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसके लिए जिस किस्म की मिलिट्री अमल की जरूरत हो इसराइल वो अमल कर सकता है, उसके लिए वो उनको एड देते रहते हैं, उसके लिए बिलियंस एंड बिलियंस, बल्कि अगर 1948 से अब तक कहा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वो उन्होंने इसराइल को एड पहुंचाई। चनाचे चाहे वो इराक कप में जब न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसको तबाह करने की बात हो, या शाम का न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की बात हो, या अब ईरान पे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की बात हो, इन तमाम चीजों में न सिर्फ अमेरिकन पैसा शामिल है बल्कि ये अमेरिकन पॉलिसी का उस खत्ते में एक हिस्सा है। दूसरा सुतून उन्होंने उसी इलाके में सऊदी अरब बनाया है। उसके दो काम हैं। उसका पहला काम तो यह है कि मगरबी दुनिया को बगैर किसी किस्म के इंटरप्शन के उनकी शराइत के ऊपर वो तेल फराहम करता रहे। इसी के साथ साथ दूसरा काम जो बहुत खामोशी से सऊदी अरेबिया करता रहा है वो ये है कि अपने एयर स्पेस मौका दर मौका अपने यहां अमेरिकन मिलिट्री बेसिस इसलिए प्रोवाइड करना कि खित्ते में अगर अमेरिका के खिलाफ कहीं भी कोई अमल हो रहा है तो उसको कुचल दिया जाए उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करके। इन दोनों मुल्कों का मिजाज एक है, इन दोनों मुल्कों का मकसद एक है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, ये दोनों अमेरिका के रहमोकरम पर चलने वाले, इनके निज़ाम अमेरिका के रहमोकरम पर चलने वाले मुल्क हैं। चुनांचे जैसा भी फरमाया आपने सवाल किया कि बराक ओबामा ने यह फरमाया कि उन्होंने किस किस तरह से इसराइल की मदद की, किस किस तरह इसराइल को बचाया, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि वो ये इलेक्शन का वक्त है अमेरिका में, इलेक्शन आप वाकिफ हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, ओबामा को सेकेंड टर्म चाहिए है, वो ज्यूइश लॉबी को इस वक्त किसी किस्म से परेशान और से अपने खिलाफ नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आलमी सूरत हाल है उस सूरत हाल में अमेरिका फिलहाल इसराइल को ईरान पर हमला करने देने की इजाजत भी नहीं देना चाहता है चुनांचे, और इससे इसराइल खफा है। तो अब इस सूरत हाल में वो बराक ओबामा के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, वो बिन्यामिन नेतन्याहू को ये समझाने की बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर हम आपको ये इजाजत नहीं दे रहे हैं कि आप ईरान पर हमला करें तो कम से कम हम आपके आड़े वक्तों पर तो आपके साथ खड़े रहे हैं, हमने आपके परेशानियों में आपका साथ दिया और हम आइंदा भी आपका साथ देते रहेंगे, अभी हालात कुछ ठीक नहीं, इसलिए सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, लेकिन आप हमसे खफा मत होइए, हमारे खिलाफ अमेरिकन पॉलिटिक्स में किसी किस्म की कोई गठजोड़ मत कीजिए। ये जो बात है कि जो नितिन बराक ओबामा ने जो बात कही है कि वो बचाते रहे हैं, मदद करते रहे हैं इसराइल की, उसका मकसद ये है कि बिन्यामिन या इसराइली वजीर आजम उनके खिलाफ इलेक्शन में सरगर्म न हो, इसराइली लॉबी और ज्यूइश लॉबी को उनके खिलाफ खड़ा न करें, और यह अश्योरेंस है कि अगर एक जगह हम अभी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं तो आप सब्र करें, हम आपके साथ आइंदा वैसे ही खड़े नजर आएंगे जैसे पहले आपके की मदद करते रहे। और ये हकीकत है कि इसराइल अमेरिका के बिना नहीं चल सकता, और उस खित्ते में अमेरिकी मफाद इसराइल के बिना उनका तहफ्फुज़ नहीं किया जा सकता। तो वो उसी बात की याद दहानी घड़ी घड़ी कराने की कोशिश कर रहे थे अपने इसराइली वजीर आजम के दौरे के दरमियान कि हम आपके साथ हैं, कुछ हालात ऐसे हैं कि अभी हम पूरी तरह से खुल के आपको नहीं कह सकते कि हमला करो ईरान पर, लेकिन आप सब्र से काम लें, हम फिर आपके साथ उसी तरह से खड़े रहेंगे जैसे पहले रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब। आगा बस हुसैन साहब, जनाब गजा पर जो हवाई हमले इसराइल के जारी हैं इनमें अमरीकी आशीर्वाद कितनी नजर आ रही है आपको?
देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं कराची में एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है फिलिस्तीनियों की हिमायत में
जी,
और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, तो ये आपके लिए बड़ी तकलीफ का बायस होगी, हमारे सुनने वालों को तकलीफ का बायस होगी कि पाकिस्तान जो कि खुद अपने मसाइल में उलझा हुआ है लेकिन वो फिलिस्तीन की हिमायत के सिलसिले में उनका जो रवैया है, उनकी जो सोच है, उनका जो उनके लिए हमदर्दी और हिमायत है वो इस वक्त भी जारी है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए जो मैंने बताया इस्लामी जहाज जो है वो बाकायदा जो है बहुत फाल है, बहुत मुतरक है, हमास से ज्यादा मुतरक हो गई है, और वही गाजा में इसराइल के खिलाफ जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयां होती हैं, और कार्रवाइयां जो है अपनी मजामत में अपने दफा में कर रही हैं, ना कि यह है कि वो इसराइल पर हमला करेंगे। देखिए बात दरअसल यह है कि इसराइल का बुनियादी मकसद यह है कि किसी तरीके से ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल करने के बाद यह है कि वो सारी तंजीमें जो गाजा में हैं या वेस्ट बैंक में हैं उनको खौफ के जरिए दबाया जाए, और अगर खौफ के जरिए काम न चले तो उन पर बाकायदा हमला किया जाए। अब देखिए कल जो सनीचर के दिन हमला हुआ, 15 फिलिस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं, और इससे पहले भी कभी 4 कभी 5 शहीद होते रहे। ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो तरीक़ेकार इसराइल अपना रहा है इसमें 2000% जो है वो अमेरिका की हिमायत हासिल है, और अमेरिका इसलिए भी हिमायत कर रहा है कि क्योंकि जाहिर है जैसे जफर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन में बराक ओबामा के अभी जो रेटिंग है वो खासी बढ़ी है और उसमें कम से कम ये है कि ये अंदिया दिया जा रहा है अमेरिकन थिंक टैंक के जरिए और जो थिंक टैंक एशिया में है कि बराक ओबामा को आइंदा चार साल के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया जाएगा क्योंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी जो पॉलिसियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। हालांकि इस पर लोग बहुत हंसे जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो, लेकिन एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पूरी यहूदी आबादी जो है अमेरिका में वो 3% है और 350 मिलियन की आबादी में 3% जो है वो यहूदी है और 80% जो इकोनॉमी है वो यहूदियों के हाथ में है और आपको मालूम है कि मीडिया भी उनके हाथ में है। तो कोई भी अमेरिकी सदर जो है वो इतनी बड़ी जो इकोनॉमी जिनके हाथ में, जिस ग्रुप के हाथ में 3% जो है सिर्फ यहूदी है पूरे अमरीका में और पूरी इकोनॉमी पे वो छाए हुए हैं, तो जाहिर है कि बराक ओबामा हो या कोई और दूसरा जब इलेक्शन लड़ता है तो उनकी एक हिमायत उस पैसे से भी होती है कि जो यहूदियों के पास है और वो वसाइल से भी करना चाहते हैं कि जो मीडिया के जरिए मिलती है। तो ये कहना कि अमेरिका जो है वो इसराइल को किसी भी लम्हे जो है सरफे निगाह कर सकता है या उसकी तरफ से मुंह मोड़ सकता है या अपनी हिमायत बंद कर सकता है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। इसका वजूद ही इसीलिए आया था कि मुसलमानों को जो है वो उनको दबा के रखा जाए और मशरक़ वस्ता के जो वसाइल हैं कुदरत की तरफ से जो वसाइल ममालिक को मिले हुए अल्लाह की तरफ से उस पर कब्जा इनका रहे। क्योंकि देखिए अब जो जिन ममालिक का मैंने नाम लिया, अब 27 अरब ममालिक हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है, या अरब लीग जिसे कहते हैं, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वो इसराइल के खिलाफ बात कर सके। ईस्ट जरूशलम में बाकायदा मकानात की तामीर शुरू हो गई है और वो मुकदस मकामात हैं उनको ढहाया जा रहा है जिनका मुसलमानों से ताल्लुक था। तो इनमें कोई इखलाकी जुरत भी नहीं है, ये अपने इख्तदार को बचाने के लिए, ये शयूख अपने इख्तदार को बचाने के लिए और अय्याशाना जो अय्याशी जो ये करते हैं, अय्याशी इसका आप मुजाहरा दुबई में भी देख सकते हैं, पहले लेबनान में देखते थे अब दुबई में आप देख सकते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनका न तो इस्लाम से कोई गहरा रब्त है या वास्ता या उसकी तालीमात पर अमल करते हैं, बल्कि ये सोनी ताकतों के एजेंट बने हुए हैं और उन्हीं के साथ ये काम कर रहे हैं। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि इनके माबेन जो इत्तेहाद होने वाला था अल फतेह के दरमियान और हमास के दरमियान, वो बाकायदा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर अचानक जो है वो स्लो हो गया और अब ये है कि वो उनके दरमियान वो गर्मजोशी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना इस बात की गमाज कर रही है जो मैंने पहले भी आपकी खिदमत में कहा था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और इसराइल वो सारी तंजीमें, क्योंकि जाहिर है कि सब तंजीमें तो हथियार नहीं डाले ना, सारी तंजीमें जो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जिसमें इस्लामी जिहाद का नाम बार बार मैं ले रहा हूँ, ये बड़ी ताकतवर बड़ी फाल तंजीमें हैं और ये लड़ रही हैं और लड़ेंगी। तो ये चीजें जो है ना इसराइल को जो है बहुत ज्यादा नागवार गुजर रहा है। अब उसका मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन से पहले पहले, जो अमेरिका के इलेक्शन से पहले पहले वो ऐसी सारी तंजीमें जो उसको 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 हरासा कर रही हैं बकौल खुद उसके या उनके अखबारात के, उन तंजीमों को खामोश कर दिया जाए और ये जो हमले हैं इसीलिए हो रहे हैं। उनको मालूम है कि जो मुसलमान ममालिक इस सिलसिले में पेश कदमी कर सकते हैं वो उन्हीं के दोस्त हैं और वो उन्हीं उन्हीं का साथ देंगे। तो इस तरीके से मुसलमान जो हैं वो बेचारे मारे जा रहे हैं और आपको मालूम है शाम इस सिलसिले में एक अहम किरदार अदा कर सकता था, लेकिन शाम में भी साम्राज्य जो है वो घुस गया है और साम्राज्य जो है अपने एजेंटों के जरिए वहां पे हुकूमत को जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वही स्टाइल अपनाया जा रहा है जो लीबिया में अपनाया गया था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे कि हो क्या रहा है, लेकिन अब साम्राज्य जो है पूरा खुल के सामने आ गया कि किस तरीके से रिजीम चेंज किए जा रहे हैं और ये जो रिजीम चेंज है उसमें हमारे मुस्लिम मालिक भी शामिल हैं और हमारे इसराइल तो जाहिर पेश है। आपको एक और बात बताऊं जिसमें आपको सुनकर बहुत अफसोस होगा कि सऊदी अरब के जो बादशाह हैं वो उन्होंने ये कहा कि ये कैसी सिक्योरिटी काउंसिल है कि जिसमें रूस को और चीन को इजाजत दी कि वो शाम के हक में जो है वीटो इस्तेमाल करें। तो ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की सोच रखते हैं, कैसे लोग हैं कि मुसलमानों के खून को बहता हुआ देख रहे हैं और ये एक हिमायत भी नहीं कर रहे हैं जो जाहिरियत पर यकीन रखते हैं, जो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, जो जुल्म पर यकीन रखते हैं। तो ये चीजें अब जो है लोगों को समझ में आ रही है और मैं समझता हूँ कि बराक ओबामा ने एक बात तो जाहिर है कि अच्छी की है कि उन्होंने बड़ी सख्ती से और उनकी बहुत सी बहुत से थिंक टैंक्स ने कहा है कि बेहतर रास्ता जो है वो यही है कि ईरान पे सोचा भी ना जाए हमला करने के। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी एक प्रोफेसर ने एक बात कही, उसने कहा कि ईरान को मजीद 5 साल चाहिए एटमी हथियार बनाने के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब एटमी हथियार मौजूद ही नहीं है तो ईरान पे ये जो पाबंदियां आयद की जा रही है, ईरान पे जुल्म किया जा रहा है, ईरान की नाकाबंदी की जा रही है, 5वां भेरी बेड़ा मौजूद है, खौफ ज्यादा कर रहा है। लेकिन मैं क्योंकि अभी ईरान से वापस आया हूँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से, तो मैं देखता हूँ कि ईरान तो के अवाम बड़े ताकतवर हैं,
बहुत खुशहाली
है, तो वहां तो काम सब माशाल्लाह कारोबार ठीक से चल रहा है। तो अमरीका और या इसराइल जो है मिलकर भी अगर चाहें कि ईरान का, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब। इसी के साथ हम जफर आगा और ताहिर वास्ती साहब के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल हुकूमतें हो सकता है कि इसराइल की हामी हो और फलस्तीनियों की हिमायत ना कर रही हो, लेकिन अवाम अरब मुल्कों के भी और गैर अरब मुल्कों के भी फलस्तीन के साथ हैं। चुनांचे अभी एक यूरोपीय अवाम की इमदाद लेकर दवाओं पर जो मुश्तमिल है, यूरोप का एक बैन अलाक्वामी कारवां गजा पहुंचा है और उधर एशिया से एक बड़ा बैन अलाक्वामी कारवां एला बैतुल मुकद्दस के नाम से हिंदुस्तान से रवाना होकर पाकिस्तान पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान होता हुआ ईरान आएगा, ईरान से लबनान और लबनान से वो मकबूजा बैतुल मुकद्दस में दाखिल होने का इरादा रखता है, जिससे पता ही चलता है कि बैन अलाक्वामी हकीकी राय आम्मा जो अवाम पर मुश्तमिल है वो फलस्तीन के साथ है। इसी के साथ अंदाज़े जहां अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़।